नमस्कार भारत, 30 जनवरी दिन मंगलवार, मैं हूं आदर्श राठौर। ट्रंप की आलोचना के शिकार एफबीआई उपनिदेशक मैकेब ने छोड़ा पद, वहीं सीआईए के निदेशक ने कहा मध्यावधि चुनाव में दखल दे सकता है रूस।
I haven't seen significant decrease in their activity. Have every expectation.
देश के 67 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखकर कहा अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ बढ़ती हिंसा तुरंत रोकी जाए।
गवर्नमेंट के खिलाफ आर्टिकल लिखना सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल के खिलाफ है, फिर भी हमने कहा क्योंकि भाई आसमान आपकी कॉन्शियंस कहती है ये गलत बात हो रही है तो कहना चाहिए।
महात्मा गांधी की 70वीं पुण्यतिथि पर बताएंगे क्या हुआ था जब आई थी उनकी हत्या की खबर, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। अमरीकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख माइक पोम्पियो ने बीबीसी से कहा है कि उन्हें आशंका है कि इस साल अमरीका में होने वाले मध्यावधि चुनावों में रूस हस्तक्षेप का प्रयास कर सकता है। सीआईए के लैंगली स्थित मुख्यालय में दिए साक्षात्कार में पोम्पियो ने कहा है कि उनकी संस्था ऐसे प्रयासों को रोकने के हर संभव प्रयास कर रही है। रूस पर साल 2016 के अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में हस्तक्षेप के आरोपों की जांच चल रही है। पोम्पियो ने कहा है कि यूरोप और अमरीका में रूस की कार्रवाई में कोई गिरावट नहीं आई है। लगभग हर सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ब्रीफ करने वाले पोम्पियो ने उन दावों को बेहुदा बातें कहा है जिनमें कहा गया था कि ट्रंप राष्ट्रपति पद के लायक नहीं हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सीआईए उत्तर कोरिया के किसी संभावित परमाणु हमले से निपटने के उपाय भी तलाश रही है। राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में माइक पोम्पियो ने कहा, मैं सिर्फ सच बोलता हूँ। मैं लगभग हर दिन व्यक्तिगत रूप से हर वो सच जो हम जानते हैं राष्ट्रपति ट्रंप के समक्ष पेश करता हूँ। ये दावा कि राष्ट्रपति ध्यान नहीं देते और इन अहम बातों को समझ नहीं पाते बेहद खतरनाक है और झूठा है। मुझे जानकर दुख होता है कि किसी व्यक्ति ने इन बेहुदा बातों को लिखने के लिए समय निकाला। वहीं अमरीकी संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के उपनिदेशक एंड्रयू मैकेब ने अपना पद छोड़ दिया है। वे इसी साल मार्च में रिटायर होने वाले थे। एक सप्ताह पहले आई रिपोर्टों में दावा किया गया था कि ट्रंप चाहते थे कि मैकेब पद छोड़ दें। ये भी सामने आया है कि ओवल ऑफिस में एक आधिकारिक बैठक के दौरान ट्रंप ने मैकेब से पूछा था कि उन्होंने किसे मतदान किया था। वहीं व्हाइट हाउस का कहना है कि मैकेब के इस्तीफा देने के फैसले के पीछे राष्ट्रपति ट्रंप नहीं हैं। वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता का कहना है कि मैकेब के इस्तीफे के बाद एक बार फिर अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में रूसी हस्तक्षेप की जाँच केंद्र में रहेगी। आयरलैंड की मंत्रिपरिषद ने देश के गर्भपात नियमों में बदलाव के लिए मई के अंत में जनमत संग्रह कराने के फैसले को औपचारिक अनुमति दे दी है। आयरलैंड में इस समय दुनिया के सबसे सख्त गर्भपात विरोधी कानून लागू हैं। जनमत संग्रह में लोग आयरलैंड के संविधान में किए गए 8वें संशोधन को समाप्त करने के सवाल पर हाँ या ना में मतदान कर सकेंगे। इस संविधान संशोधन के तहत आयरलैंड में गर्भपात कराना अब तक गैर कानूनी है जब तक ये मां की जान बचाने के लिए जरूरी ना हो। कैबिनेट के फैसले के बाद की गई एक प्रेस वार्ता में आयरलैंड के प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने कहा है कि वो संशोधन को समाप्त किए जाने के समर्थन में मतदान की अपील करेंगे। प्रधानमंत्री लियो वराडकर ने कहा, ये हमारा संविधान है और ये फैसला आयरलैंड के लोग ही लेंगे। मुझे इस बात को लेकर कोई शक नहीं है कि वो एक सही फैसला लेंगे जो उनकी करुणा सहानुभूति पर आधारित होगा, लेकिन वो किसी भी रूप से मानवीय जीवन के प्रति अपमानजनक नहीं होगा। चिली के राष्ट्रपति मिचेल बाचलेट ने पैट्रेगोनिया के विशाल इलाके को संघर्ष के लिए 5 राष्ट्रीय पार्क बनाने के लिए कानून को अनुमति दे दी है। इन नए राष्ट्रीय पार्कों के तहत चिली के सुरक्षित क्षेत्र में 40,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका और जुड़ जाएगा। इसमें द नॉर्थ फेस कपड़ा कंपनी के संस्थापक दिवंगत अमरीकी परोपकारक के मालिकाना हक वाले इलाके भी शामिल हो जाएंगे। बीबीसी समाचार।
B बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और फेसबुक पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है आदर्श राठौर। अमेरिका में हुए एक अहम घटनाक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप की आलोचना के शिकार रहे एफबीआई के उपनिदेशक एंड्रयू मैकेब ने इस्तीफा दे दिया है। एफबीआई अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में रूस के हस्तक्षेप की जांच कर रही है। वहीं अमरीकी खुफिया एजेंसी सीआईए के निदेशक माइक पोम्पियो ने बीबीसी से कहा है कि इस साल होने वाले मध्यावधि चुनावों में रूस हस्तक्षेप की कोशिश कर सकता है। दोनों खबरों पर बीबीसी संवाददाताओं की भेजी रिपोर्टों का ब्यौरा सुना रहे हैं दिलनवाज पाशा।
अमरीकी संघीय जांच एजेंसी एफबीआई के उपनिदेशक एंड्रयू मैकेब ने रिटायर होने से कई सप्ताह पहले ही अपना पद छोड़ दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप उन पर कई बार राजनीतिक रूप से पक्षपाती होने का आरोप लगा चुके हैं। वहीं अमेरिकी मीडिया की रिपोर्टों के मुताबिक मैकेब को पद छोड़ने के लिए मजबूर किया गया है। हालांकि व्हाइट हाउस का कहना है कि मैकेब के इस्तीफे में राष्ट्रपति ट्रंप की कोई भूमिका नहीं है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव सारा हकाबी सैंडर्स ने जोर देकर कहा कि ट्रंप मैकेब के इस्तीफे के पीछे नहीं है। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा, हमने कई रिपोर्टें देखी हैं जैसे कि आप सबने भी देखी हैं, लेकिन मैं आपसे कह सकती हूं कि इनमें से कोई भी फैसला व्हाइट हाउस ने नहीं लिया है और किसी भी खास सवाल का जवाब एफबीआई देगी, जो मुझे उम्मीद है आज बयान जारी करेगी। वहीं एक रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ओवल ऑफिस में एक आधिकारिक बैठक के दौरान ट्रंप ने मैकेब से पूछा था कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनावों में किसे वोट दिया है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक मैकेब ट्रंप के इस कथित सवाल के बाद से ही परेशान थे। मैकेब ने कुछ एफबीआई के पूर्व निदेशक जेम्स कॉमी को पद से हटाए जाने के बाद कुछ समय के लिए एफबीआई का कार्यभार भी संभाला था। एफबीआई ही अमरीकी राष्ट्रपति चुनावों में रूसी दखल के आरोपों की जांच कर रही है। इसी बीच अमरीकी खुफिया एजेंसी सीआईए के प्रमुख माइक पोम्पियो ने बीबीसी से कहा है कि उन्हें आशंका है कि इसी साल अमरीका में होने वाले मध्यावधि चुनावों में रूस दखल दे सकता है। माइक पोम्पियो ने बीबीसी को दिए साक्षात्कार में कहा, मैंने रूस की गतिविधियों में कोई खास कमी नहीं देखी है। मुझे आशंका है कि वो प्रयास जारी रखेंगे और ऐसा करेंगे, लेकिन मुझे विश्वास है कि अमरीका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में कामयाब रहेगा। हम हर मुमकिन तरीके से ऐसे प्रयासों को नाकाम करेंगे और वो हमारे चुनावों को बहुत हद तक प्रभावित नहीं कर पाएंगे। माइक पोम्पियो ने उन दावों को भी बेहुदा बातें बताया है जिनमें कहा गया था कि राष्ट्रपति ट्रंप कार्यभार संभालने में सक्षम नहीं है। पोम्पियो ने यह भी बताया है कि सीआईए उत्तर कोरिया के किसी संभावित परमाणु हमले से निपटने के उपाय तलाशने पर भी काम कर रही है।
इन दोनों खबरों पर आप विस्तार से जानकारी लेने के लिए bbchindi.com पर आ सकते हैं। देश के 67 रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स ने प्रधानमंत्री मोदी को एक खत लिखा है। उन्होंने लिखा है कि अल्पसंख्यकों और दलितों के खिलाफ बढ़ती हिंसा तत्काल रोकी जाए। नौकरशाहों का ये कदम कितना रंग लाएगा, इसे लेकर हमारे सहयोगी रजनीश कुमार ने जाने माने ब्यूरोक्रेट और योजना आयोग के पूर्व सदस्य एनसी सक्सेना से बात की। उन्होंने बताया कि उनका अगला कदम क्या होगा।
कि ऐसा है ना कि परिवर्तन फौरन तो नहीं हो सकता है, लेकिन ये कि अगर कोई अन्याय हो रहा है तो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। परिवर्तन अगर हम आवाज उठाएंगे तो फिर और लोग भी आवाज उठाए तो परिवर्तन होगा। अगर कोई भी आवाज नहीं उठाएगा तो परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि ये तो पॉलिटिकल मामला है, पॉलिटिकली सूट करता है। तो इसलिए जरूरी है कि अगर अन्याय हो रहा है तो आवाज उठाएं। अगर हम उठाएंगे तो और लोग भी उठाएंगे, ज्यादा लोग उठाएंगे तो परिवर्तन होगा। कम से कम लोगों को शर्म आएगी, भाई ये नहीं करना चाहिए।
सर, एक बात ही कही जाती है बार बार कि जो पूर्व ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, कई लोग सर ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि जब वो अपनी भूमिका में होते हैं, जब वो सेवा में होते हैं, सर्विस में होते हैं, तो उनके सामने जब इस तरह की समस्या आती है तो लगभग खामोश हो जाते हैं, और जब सेवा से मुक्त हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो ऐसी आवाज उठाते हैं।
नहीं, देखिए ऐसा है ना कि अब ये जो रिटायर हो गए हैं, सबने तो आवाज नहीं उठाई है। अब ये तो नहीं है कि हम कह सकते हैं सारे सारे रिटायर्ड डॉक्टर हमारे साथ हैं, कुछ लोग साथ में हैं, कुछ नहीं है। अब हम लोगों ने अपने करियर में क्या किया वो तो अलग सवाल है। अगर आप चाहें तो हम आप आपसे बात कर सकते हैं कि हमने कब कब आवाजें उठाई, कब कब हमने अन्याय के खिलाफ शासन को लिखा, अखबारों तक में लिखा। मैंने तो मेरा तो अपने आर्टिकल्स निकले थे अखबारों में,
जब जब ऐसे हालांकि गवर्नमेंट के खिलाफ आके लिखना एक सिविल सर्विस कॉन्डक्ट रूल के खिलाफ है, लेकिन फिर भी हमने कहा क्योंकि भाई आत्मा आपकी कॉन्शियंस कहती है ये गलत बात हो रही है तो कहना चाहिए, तो हमने हमेशा उठाया इस बात को। अगर आप देखिए मेरे प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें, उसमें भी बहुत सारी बातें जो गवर्नमेंट के खिलाफ है उसमें कही गई हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, ये बात सही है कि जब इंसान सर्विस में होता है तो थोड़ा सा एक कंस्ट्रेंट्स होते हैं, सर्विस होने के बाद आपकी कॉन्शियंस जो है उसको एक्ट करना आसान हो जाता है, ये तो सही है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सर्विस कार उन्हें भी बहुत शोर मचाया।
आप लोग का कुछ अगली तैयारी है क्या, अगला कदम?
अभी कल हम लोग एक बैठक कर रहे हैं इस बारे में इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में, वहाँ पर आप आना चाहे आ जाइए, लोधी रोड पर जो है।
सर मुख्य रूप से इस सरकार से आपकी जो शिकायत है वो माइनॉरिटी के खिलाफ जो हिंसा बढ़ रही है वो है?
जी हाँ जी हाँ, माइनॉरिटी के खिलाफ, रिलीजियस माइनॉरिटीज क्रिश्चियंस हैं और साथ साथ दलित के खिलाफ भी बढ़ रही, और एक इम्प्रेशन क्रिएट कर दिया गया है कि भैया मुसलमानों को मारो तो कोई खिलाफ कोई गलत काम नहीं है, कोई आप खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, उनको एक तरह से दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज ह्यूमन बीइंग, दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड एज सिटीजंस ऑफ दिस कंट्री।
कल बजट सत्र के पहले दिन संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए वित्तीय वर्ष के लिए आर्थिक सर्वे पेश किया। इस सर्वे में आर्थिक वृद्धि दर 7 से 7.5% रहने का अनुमान लगाया गया है। बीबीसी संवाददाता रजनीश कुमार ने पटना स्थित एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डीएम दिवाकर से बात की और पूछा कि क्या आर्थिक सर्वे का अनुमान सही साबित होगा।
नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पिछले समय में इन्होंने जो भी अनुमान लगाए हैं सारे अनुमान उतरे नहीं है, ठीक नहीं उतरे हैं, दो कारणों से। एक तो इनकी जो अपनी वित्तीय स्थिति है वो खराब है, और पिछले बार जो घाटे की स्थिति थी और बढ़ गई, इनके जो रोजगार और अन्य फ्रंट पर जो इनको बेहतरी करना था वो नहीं हुआ, तो आगे बढ़ोतरी होगी इसकी संभावना एक नहीं है। एक दूसरा कारण है कि पिछले साल इनको फायदा था कि क्रूड ऑयल के दाम कम थे इनके पास, अंतर्राष्ट्रीय क्रूड ऑयल के दाम कम होने पर इन्होंने अपना दाम घटाया नहीं था, तो उससे जो ये पैसा जमा कर रहे थे उससे काम इनका चल रहा था। इस बार चूंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं तो वहाँ भी उस फ्रंट पर भी इनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और तीसरी बात कि डिस इन्वेस्टमेंट के जो प्लान पिछले साल किए थे, अब अगर बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, कुछ आगे और भी बेचेंगे तो किसी तरह से ये चला पाएंगे, और 7वां वेतन इन्होंने लागू कर दिया है तो उसके दबाव अलग से होंगे, प्लस यह साल इलेक्शन का साल भी होने जा रहा है तो उसके कारण से भी कई तरह के खर्चों की वृद्धि होगी, इसलिए मुझे तो नहीं लग रहा है कि इनका जो वृद्धि दर का अनुमान है उस अनुमान पर ये खड़े उतरेंगे।
सर आपने जिक्र किया कच्चे तेल की कीमत बढ़ रही है, और इस बात का जिक्र सर अरुण जेटली खुद संसद में किया है, तो उनकी भी आशंका है कि इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए कच्चे तेल की कीमत जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बढ़ेगी वो उसका शायद बुरा असर हो, तो क्या सर इसका इतना ज्यादा इम्पैक्ट होगा जो कि उनका जो अनुमान है उस अनुमान पे भारी पड़े?
बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि एक बात और समझिए कि तेल का दाम बढ़ना सिर्फ तेल का दाम बढ़ना नहीं होता है, उसका कास्केडिंग इफेक्ट, कई मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ता है कई क्षेत्रों में, जिसके कारण से अर्थव्यवस्था की स्थिति चरमराएगी। नोटबंदी और जीएसटी ऐसे ही पिट चुकी है, उस पर इनको जो मिलना था, जिसकी ये उम्मीद कर रहे थे, वो इनसे हो नहीं पाया है, तो उसके कारण से आर्थिक फ्रंट पर ये कमजोर हैं। बेसिकली रिसोर्स मोबिलाइजेशन का फ्रंट इनका कमजोर है, अभी भी इनपुट क्रेडिट के फ्रंट पर में ये जो कहना चाहते तो आज भी नहीं स्ट्रीमलाइन कर पाए हैं, तो इनके पास संसाधनों की किल्लत होगी, और अगर संसाधनों की किल्लत होगी तो कैसे उस आधार पर में ये कहेंगे कि हम बेहतर ग्रोथ रेट ले आएंगे। मुझे नहीं लगता कि अभी जो ये कह रहे हैं वो अनरियलिस्टिक है, अगर मुझे प्रोफेशनल टर्म्स में कहना पड़े तो ये अनरियलिस्टिक है।
सोमवार सुबह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक बस नहर में जा गिरी। इस बस में 56 लोग सवार थे। अब तक इस नहर से 36 शव निकाले जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी भी कम से कम 10 लोग गायब हैं। पूरे मामले पर स्थानीय पत्रकार पीएम तिवारी से बात की हमारे सहयोगी रजनीश ने और पूछा कि किस तरह के हालात हैं वहाँ।
हाँ, ये हाल के वर्षों में बंगाल में होने वाली सबसे भयावह सड़क दुर्घटना है। ये बस सुबह करीब 5:15 बजे नदिया जिले से चली थी करीमपुर से और मालदा जा रही थी। बीच में मुर्शिदाबाद जिला मुख्यालय है बहरमपुर, वहाँ एक काफी बड़ा सा कैनल है, नहर है, उस पर ब्रिज था, तो उसी ब्रिज पर रेलिंग तोड़ के वो नहर में गिर गई बस, और उसमें 56 आदमी थे। पुलिस ने भी इसकी पुष्टि की है कि 56 यात्री थे उसमें, लेकिन लोगों का आरोप है और बस यात्री जो घायल बचे हैं उनका कहना है कि बार बार मना करने के बावजूद ड्राइवर वो मोबाइल फोन पे लगातार बातें किए जा रहा था। तभी अचानक सामने से एक ट्रक आ गई जिससे बचने के चक्कर में उसने ब्रेक लगाया तो नियंत्रण खो बैठा और वो नहर में बस गिर गई। और उस समय सुबह 6 बजे थे और काफी कोहरा भी था इलाके में, तो इन सब चीजों को मिला के और काफी दिक्कत हो गई।
सुबह 6 बजे बस दुर्घटनाग्रस्त हुई और 6 बजे के बाद अभी 10 बजने वाले हैं, उसके अब तक वहां से डेड बॉडी नहीं निकाली जा चुकी है, मतलब अब तक वहां पे सारी चीजें अभी फंसी हुई हैं, कुछ ज्यादा देर नहीं लगी?
असल में जब दुर्घटनाग्रस्त हुए उसके बाद सबसे पहले तो गांव वाले पहुंचे और उनका आरोप है कि खबर देने के बावजूद पुलिस देर से पहुंची कोई 40 मिनट बाद, और वहां कोई NDRF की टीम भी नहीं थी, बचाव दल वैसा बचाव का इंतजाम नहीं था और क्रेन भी नहीं उपलब्ध थी निकालने के लिए बस को। बस काफी गहरे नीचे धंस गई थी बालू में जाके नहर के नीचे, तो कलकत्ता से NDRF की टीम गई जो 200 किलोमीटर के आसपास है, फिर वहाँ क्रेन जुटाई गई, 4 क्रेन मिलके शाम करीब 5 बजे बस निकाली जा सकी, तो उसके बाद सारी लाशें बस में ही थी।
मतलब 56 लोग बस में सवार थे, 3600 अब तक बरामद किए जा चुके हैं, और हाँ, अभी कितने लोग उसमें से बचे हुए हैं जो कि बता रहे हैं कि अभी भी लोग मिसिंग हैं?
7 लोग तो घायल थे जो किसी तरह तैर के निकल के आ गए, तो मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में हैं। बाकी कम से कम वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों का कहना है कि 12-14 लोग कम से कम अभी मिसिंग हैं जिनका
इसमें आप बता पाएंगे कितनी महिलाएं हैं और कितने बच्चे हैं जो इस दुर्घटनाग्रस्त में जो मारे गए?
अब तक जो शिनाख्त हुई है उनमें 6 महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं। अब तक 2400 की शिनाख्त हो पाई है रात तक, तो उनमें 2 बच्चे 6 महिलाएं हैं।
ऐसा लग रहा है कि नहर में पानी ज्यादा था?
हाँ, नहर में पानी काफी था और काफी गहरा है वो।
अभी हमें सुबह तक इंतजार करना होगा पूरी स्थिति साफ होने में?
हाँ, अब तो वो गोताखोर भी अब तो अंधेरा होने की वजह से वहाँ, और थोड़ा ऑफबिट इलाका है, शहर से दूर है 10-12 किलोमीटर मुर्शिदाबाद जिला मुख्यालय से, तो अब फिर सुबह से फिर बचाव कार्य और शुरू किया जाएगा जैसा कि पुलिस ने बताया।
ये बातचीत उस समय रिकॉर्ड की गई थी जब कल रात अंधेरा होते ही राहत और बचाव कार्य रोक दिया गया था और अब सुबह होते ही फिर से ये काम शुरू हो चुका है। आज महात्मा गांधी की 70वीं पुण्यतिथि है। 1948 में आज ही के दिन दिल्ली में नाथूराम गोडसे नाम के व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। जब महात्मा गांधी को गोली मारे जाने की खबर आई तब कैसे हालात थे, सुनिए रिहान फजल की विशेष पेशकश।
गांधी के निधन पर शायद सबसे यादगार श्रद्धांजलि जॉर्ज बर्नार्ड शाह की तरफ से आई थी, जिन्होंने कहा था कि उनकी हत्या बताती है कि अच्छा होना कितना खतरनाक भी हो सकता है। गांधी के बारे में एक अमरीकी पत्रकार विंस्टन शीन ने भी लिखा था, वो खादी की शाल ओढ़े हुए एक बूढ़ा शख्स ही तो था, लेकिन जब वो मरा तो सारी मानव जाति अपने आंसू नहीं रोक पाई और फूट फूट कर रोई। विंस्टन शीन दुनिया के कई अशांत क्षेत्रों की घटनाओं को कवर करते हुए 1947 में भारत पहुंचे थे और महात्मा गांधी के मुरीद बन गए थे। ये इत्तेफाक था कि जब नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मारी तो वो वहां से सिर्फ 10 गज की दूरी पर खड़े थे। उन्होंने न्यूयॉर्क हेराल्ड ट्रिब्यून में लिखा,
मैंने एक टैक्सी की और गांधी जी की प्रार्थना सभा से पहले ही बिरला हाउस पहुंच गया। अभी 5 नहीं बजे थे और लोग पैदल कार और तांगों से गेट के सामने उतर रहे थे। जब मैं प्रार्थना स्थल पर पहुंचा तो वहां BBC के संवाददाता बॉब स्टिमसन खड़े थे। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने BBC की तरफ से गांधी को कुछ सवाल भेजे हैं, शायद गांधी आज उनका जवाब दें, इसलिए मैं प्रार्थना के बाद उनसे मिलने की कोशिश करूँगा। अचानक उनकी नज़र अपनी घड़ी पर गई और वो बोले, बहुत अजीब है कि गांधी जी को प्रार्थना सभा में पहुँचने में देरी हो गई है। हम दोनों ने फिर अपनी घड़ी की तरफ देखा, उस समय 5:12 हुए थे। तभी बॉब ने कहा, वो रहे गांधी जी। बाद में मैंने कहीं पढ़ा कि उस समय गांधी जी चप्पल पहने हुए थे, लेकिन मुझे वो कहीं दिखाई नहीं दी। मुझे तो लगा कि वो नंगे पैर ठंडी घास पर चल रहे थे। तभी हमें चार दबे हुए धमाकों की आवाज सुनाई दी। मैंने बॉब से पूछा, ये क्या था? जैसे ही बॉब ने कहा मुझे नहीं पता, मैंने उनके चेहरे की तरफ नजर घुमाई और वो मुझे अचानक पीला पड़ता दिखाई दिया। मेरे मुंह से निकला, नॉट महात्मा, और मुझे पता चल गया क्या हुआ था।
इस समय गोली चली, वहां 20 वर्षीय देवदत्त भी खड़े थे। उन्हें वो पूरा दृश्य अभी तक याद है जैसे वो कल की ही बात हो।
हमने देख लिया था, एक घुटा हुआ सिर वाला और फौजी ने वर्दी पहनी हुई थी, खाकी सी, और बहुत टेंस, मेरे से तीन चार आदमी छोड़ के खड़ा था। तो निकाल करके उसने पिस्तौल मारे, सामने खड़े हुए सीधे मारे, हमको समझ भी नहीं अभी क्या कर रहा है, झुका और झुकते ही उसने लगा दिया। तो जब ठा ठा हुआ तो गिर गए, तो लोगों ने तो उनकी तरफ गड़े, हम उस अकेले गांधी को देख रहे थे, अकेले लेटा हुआ था, तो हमको तो उसकी बुझती आंखें ही रोलिंग आईज। उसके बाद चल पड़े, वो 30 जनवरी मार्ग से पैदल फिर वापस यूनिवर्सिटी गए। हम फिर जब निकले हैं तो हमने बियाबान देखा, दिल्ली की सड़कों पर कोई नहीं, खाली हो गई थी, ढाबे बंद हो गए थे, तब हमको पता लगा कि ये कौन था।
इस बीच बदहवास बीबीसी संवाददाता बॉब स्टिमसन टेलीफोन की तलाश में बाहर भागे। थोड़ी देर बाद बीबीसी पर उनकी आवाज सुनाई दी।
At 5:03 Indian time, Mr. Gandhi came out of Birla House. And because he was a little late for evening prayers,
उस समय भारत के वॉयसराय लॉर्ड माउंटबेटन की 18 साल की बेटी पामेला माउंटबेटन गवर्नमेंट हाउस के अपने बेडरूम में तैयार हो रही थी। तभी उन्होंने रेडियो पर गांधी की हत्या की खबर सुनी।
I remember being in my bedroom and with the radio turned on and hearing this unbelievable news that Gandhiji had been assassinated.
मुझे याद है, मैं अपने बेडरूम में तैयार हो रही थी, तभी मुझे रेडियो पर गांधी की हत्या की अविश्वसनीय खबर सुनाई दी। अचानक मैंने पाया कि मेरी आंखों से आंसू बह निकले, जैसे मेरे परिवार का कोई बहुत ही करीबी शख्स इस दुनिया से चला गया हो।
उधर कुछ ही दिनों पहले पत्रकारिता में अपने करियर की शुरुआत कर चुके कुलदीप नैयर अपने अखबार अंजाम के दफ्तर में बैठे हुए थे।
उन दिनों में ये जो टेलीप्रिंटर है, अब तो खैर टेलीप्रिंटर रहे भी नहीं, जो है उस वक्त कोई अगर बहुत जरूरी खबर होती तो घंटी बजती थी, तो घंटी बजी तो मैं एकदम वहां पहुंचा, तो उसमें था गांधी शॉट एट, वो इतना ही था। तो मैंने किसी से कहा भी मुझे तो बिरला हाउस में छोड़ दो, तो आदमी मुझे छोड़ गया बिरला हाउस में। कोई कुलीग ही था, उसके पास मोटरसाइकिल था। उस वक्त मैंने पंडित नेहरू को देखा, सरदार पटेल को देखा, मौलाना आज़ाद कुर्सी पर बैठे गम में डूबे हुए। उस वक्त गवर्नर जनरल माउंटबेटन नहीं आए थे, मेरे होते ही आए, तो उन्होंने खैर बॉडी को सैल्यूट तो किया। तो महसूस किया मैंने कि आज हिस्ट्री यहीं पे फूट रही है, महसूस किया कि आज अपने सिर पे से कोई हाथ रखने वाला नहीं है। बापू एक हमारे सबके गम भी रिप्रेजेंट करते थे, हमारी खुशियाँ, हमारी एस्पिरेशंस, हमारी सोच, सब कुछ वही तो थे।
पामेला माउंटबेटन कहती हैं कि करोड़ों भारतवासियों की तरह उन्हें भी लगा कि उनके परिवार का कोई सदस्य इस दुनिया से चला गया है।
Literally, India came to a standstill. Eventually, my father dashed down to Birla House. A Muslim killed Gandhiji.
जैसे ही ये खबर फैली, लगा कि पूरा भारत जैसे रुक गया हो। मेरे पिता तुरंत बिरला हाउस पहुंचे, जैसे ही वो कार से उतरे, भीड़ में किसी ने चिल्लाया, मुसलमान ने गांधी को मारा। मेरे पिता ने तपाक से जवाब दिया, यू फूल, इट वॉज अ हिंदू। वास्तव में उस समय तक किसी को पता नहीं था कि हत्यारा कौन था, लेकिन मेरे पिता को लगा कि भारत में खून खराबा बचाना है तो यही सबसे उचित जवाब है।
The body of Gandhi is brought to the balcony. Earthly remains of the spiritual and political father to millions, a saint and even a god to many.
Ishwar Allah tere naam sabko sanmati de bhagwan.
Ishwar Allah tere naam sabko sanmati
रघुपति राघव।
ریحان فضل، بی بی سی دلی۔
آج شام 7:30 بجے دن بھر کارکرم سننا نہ بھولیں، جس میں مہاتما گاندھی کی ہتیا کے 70 سال پورے ہونے پر ایک وشیش کارکرم پرستوت کیا جائے گا۔ اور اب وقت ہو چلا ہے اخباروں کی سمیکشا کا۔ دلی سے چھپنے والے اخباروں کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں دل نواز پاشا۔ کیا کہتے ہیں آج کے اخبار؟
جی، کل سنسد میں بھارت کا آرتھک سرویکشن پیش ہوا تھا، اور آج کے اخبار بتا رہے ہیں کہ بھارتی ارتھ ویوستھا رفتار پکڑے گی۔ یہ خبر لگ بھگ سبھی اخباروں کے پہلے پنے پر ہے۔ اس کے علاوہ راشٹرپتی رام ناتھ کووند کے اس بیان کو پرمکھتا سے چھاپا گیا ہے جس میں انہوں نے لوک سبھا اور ودھان سبھا چناؤ ایک ساتھ کرانے کے سنکیت دیے ہیں۔ وہیں پردھان منتری نریندر مودی نے بھی کل ایسے ہی سنکیت دیے۔ اس کے علاوہ ایک اور خبر دھیان کھینچ رہی ہے، جنستا کے پہلے پنے پر ہے۔ بیتے سال بھارتیہ جنتا پارٹی کو قریب 500 کروڑ روپے کا چناوی چندہ ملا، وہیں کانگریس کی جھولی میں آئے لگ بھگ 87 کروڑ روپے۔ کل ہم نے وسط اللہ خان کی ڈائری سنائی تھی پاکستان میں، جس میں انہوں نے سیلفی کا ذکر کیا تھا، اور آج نئی دنیا اخبار کے پہلے پنے پر ایک خبر ہے جس میں سیلفی لینے کے جنون میں ایک یوا 50 فٹ ٹاور پر سائیکل لے کے چڑھ گیا، سائیکل کے ساتھ سیلفی کھنچائی، سائیکل وہیں چھوڑی اور چلا گیا۔ بعد میں پولیس جانچ میں پتا چلا کہ وہ مانسک روپ سے کمزور ہے۔ ذکر امر اجالا کی ایک خبر کا جس میں پنجاب میں پردرشنکاریوں کو منانے میں ناکام رہے ایک ڈپٹی ایس پی نے اپنے سر میں گولی مار کر آتم ہتیا کر لی، یہ خبر آج امر اجالا بتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جنستا میں ایک کارٹون پرکاشت ہوا ہے، پدماوت فلم نے 4 دنوں میں ہی اپنی لاگت نکال لی ہے۔ ایک پردرشنکاری بھنسالی سے کہہ رہے ہیں اب تو شکایت نہیں ہے کرنی سینا سے۔ جی آدرش،
بہت بہت شکریہ دل نواز۔ اور اب سمے ہے کھیل سماچاروں کا۔
کھیل سماچاروں کے ساتھ میں سوریانشی پانڈے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں بیڈمنٹن کی خبر، جہاں پر آج انڈیا اوپن سپر سیریز کا آغاز ہوگا۔ آج سے دلی کے شری فورٹ سپورٹس کمپلیکس میں انڈیا اوپن سپر سیریز کھیلا جانا ہے۔ آپ کو بتا دیں، انڈیا اوپن سپر سیریز کے 2017 کے وجیتا رہے تھے ویمن سنگلز میں پی وی سندھو اور مین سنگلز میں وکٹر ایکسلسن، حالانکہ اس سال کے سنسکرن میں وکٹر ایکسلسن نہیں کھیل رہے۔ اور کرکٹ کے میدان پر آج نیوزیلینڈ میں ایسا مقابلہ ہوگا جس کا بھارتی کرکٹ پرشنسکوں کو بے صبری سے انتظار ہے۔ آج انڈر 19 وشو کپ میں بھارت اور پاکستان کے بیچ سیمی فائنل کا مقابلہ کھیلا جانا ہے، جہاں انڈر 19 وشو کپ میں بھارت کی طرف سے کپتانی کرتے نظر آئیں گے پرتھوی شا، تو وہیں پاکستان کے انڈر 19 ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں حسن خان۔ جاتے جاتے آپ کو ٹینس کی خبر سے روبرو کراتے ہیں۔ دگج بھارتی ٹینس کھلاڑی لیانڈر پیس نے ایک بار پھر سے ڈبلز ورگ میں دنیا کے ٹاپ 50 پرش کھلاڑیوں میں واپسی کی ہے۔ ایسا ہوا ہے نیوپورٹ پورٹ پر کھیلے گئے چیلنجر خطاب کے کارن۔ پیس نے امریکہ کے جیمز سیرٹانی کے ساتھ مل کر نیوپورٹ بیچ ٹورنامنٹ جیتا، اس سے پیس کو 125 ریٹنگ ملے، اور اس سے پیس ایک بار پھر سے ٹاپ 50 میں پہنچنے میں کامیاب رہے۔ جہاں لینڈر پیس ٹاپ 50 میں پہنچے ہیں، تو وہیں روہن بوپنا کی ڈبلز میں 20th رینکنگ برقرار ہے۔ سنگلز میں یوکی بھامری 8 پائدان چڑھ کر 118 نمبر پر پہنچے ہیں، تو وہیں رام کمار 140، سمت ناگل 228 اور پرگنیش 244 نمبر پر رہے۔
اور اس سے پہلے کی ودا لیں، مکھیا سماچار ایک بار پھر۔
امریکی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کے پرمخ مائک پومپیو نے بی بی سی سے کہا ہے کہ انہیں آشنکا ہے کہ اس سال امریکہ میں ہونے والے مدھیاودھی چناؤں میں روس ہستکشیپ کر سکتا ہے۔ امریکی سنگھیہ جانچ ایجنسی ایف بی آئی کے اپنیدیشک اینڈریو مکیب نے اپنا پد چھوڑ دیا ہے، وہ اسی سال مارچ میں ریٹائر ہونے والے تھے۔ آئرلینڈ کی منتری پریشد نے دیش کے گربھپات نیموں میں بدلاؤ کے لیے مئی کے انت میں جنمت سنگرہ کرانے کو اوپچارک انومتی دے دی ہے۔ آئرلینڈ میں اس سمے دنیا کے سب سے سخت گربھپات ورودھی قانون لاگو ہیں۔ چلی کے راشٹرپتی مچیل باچلیٹ نے پیٹاگونیا کے وشال علاقے کو سنرکشن کے لیے 5 راشٹریہ پارک بنانے کے لیے قانون کو انومتی دے دی ہے۔ بھارتیہ ڈاکٹروں نے بھارت میں ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر کی مہاماری کی چیتاونی جاری کی ہے۔ ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر سے دل کی بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ فیس بک اپنی سماچار سیواؤں کو استھانیہ سماچار شروتوں پر کیندرت کرنے جا رہا ہے۔ شروعات میں یہ کارکرم امریکہ میں لاگو کیا جائے گا، جسے بعد میں وشو بھر میں لاگو کیا جائے گا۔ بی بی سی سماچار۔
بی بی سی ہندی سیوا کی پہلی سبھا نمسکار بھارت کے اس انک میں اتنا ہی۔ آج اسٹوڈیو سنبھالا دیپک جسروٹیا نے، فیس بک پر آپ تک یہ کارکرم پہنچایا مینا کوٹوال نے۔ शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम के साथ फिर हाजिर होंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।